بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. هر سال شہید باخر سر اور ان کی عظیم بہن بنت الہدا کی شہادت کے موقع پر ہم تقاریب برگزار کرتے ہیں، ہر سال ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ ان کی 35ویں شہادت کی برسی ہے، ہر گزشتہ موقع پر ہم جب بھی یاد کرتے تھے آج والا احساس نہیں ہوتا کہ جہاں پر ان کے افکار کی اہمیت ہم کو جس واضح طریقے پر خصوصاً اسلامی دنیا میں سمجھ میں آ رہی ہے، پتا چلتا ہے، توجہ کم ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ شہید بہت آگے کی چیز جب دیکھ لیتا ہے تبھی شہید ہوتا ہے، اختیار شہادت جب کرتا ہے تو بہت آگے دیکھ لیتا ہے کہ جب میں شہید آج ہو رہا ہوں، آج جو تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ یہ شہادت حسینی میں بھی تھا، شہادت علوی میں بھی تھا، اور گزشتہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان سب میں جہاں پر شہید نے اپنی شہادت کو اختیار کیا، ایسے شہید ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اختیار نہیں کیا، انہوں نے نیکی کی، ان کو بغیر ان کے بتلائے ہوئے یا بم کے ذریعے سے یا پستول کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپشن رہتا ہے کہ ہم شہید ہوں یا شہید نہ ہو، جیسا کہ امام حسین کو آپشن قیام نہ کرتے، شہید کربلا میں نہیں ہوتے۔ امام حسین کی مکے سے کربلا کی طرف حرکت، کوفے کی طرف حرکت سبب شہادت بنی اور بیعت کے انکار نے سب آخری حجت کو تمام کیا۔ باخر صدر اور آمینہ صدر یہ بھی اسی زمرے کے شہداء ہیں کہ جنہوں نے شہادت کو دیکھا سامنے اپنے آتے ہوئے اور اسے گلے لگایا اور قبول کیا، بچنے کے راستے موجود تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیفیت انسان میں آتی کیسے ہے۔ ہم جب عالم کی بات کرتے ہیں، عالم کی سب سے پہلی پہچان ہے خشیت اللہ۔ قرآن کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سوائے علماء کے اللہ سے کوئی خوف نہیں کرتا، یعنی ہم میں بھی جو بھی کچھ خوف خدا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ عالم سے مراد کوئی خاص پڑھائی پڑھنے والا یہاں پر قرآن نہیں کہہ رہا ہے، عالم وہ ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اور اللہ کا خوف سوائے عالم کے کوئی نہیں رکھتا۔ تو ہم میں جتنا خوف خدا ہوگا اتنے ہم عالم ہیں، جتنا کم خوف خدا ہوگا اتنے کم عالم ہوں گے۔ کچھ بھی خوف خدا نہ ہو ہم عالم ہی نہیں ہوں گے، اور اگر اعلیٰ درجے کا خوف ہو تو اعلیٰ عالم ہوں گے۔ شہید صدر اور ان کی بہن وہ اعلیٰ مرتبے والے کہ جن کا خوف خدا ہر خوف سے ان کو نجات دے چکا تھا، جن کا خوف خدا رکھنا ہر خوف سے ان کو نجات دے چکا تھا۔ قرآن کی اور ایک آیت جو کہتی ہے کہ اللہ کا بیان کون پہنچا دے، اللہ کا بیان کون پہنچا دے، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ اللہ کے بیان پہنچانے والے لوگ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ شرط ہے مبلغ کی، توجہ کم ہوتا، شرط ہے مبلغ کی کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ اب جو اللہ سے ڈر رہا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہو تو اسے شہادت اختیار کرنا آسان ہوتا ہے یا آسان نہیں ہوتا؟ किस कैफियत की, अल्लाह से रब रखने की इंसान की कुदरत है वही उसको डिफाइन करती है। आज हम जिस रिश्ते पर भी अकड़ते हो, खानदानी, पैसे से रब, जो भी रिश्ता हो, कोई रिश्ता दुनिया भी ऐसा नहीं है जो खत्म नहीं हो जाएगा, कट नहीं जाएगा। एक ही रिश्ता है कि जिसकी कोई मुद्दत नहीं है, पैदा इससे पहले हमारे साथ अल्लाह था, इस दुनिया में हमारे साथ अल्लाह है, इस दुनिया को जब हम छोड़ जाएंगे तब भी अल्लाह रहेगा। अब वो रिश्ता समझ में अगर आ जाए, अगर वो रिश्ता समझ में आ जाए तो जैसा हुजरतुल इस्लाम मुनव्वर साहब और हुजरतुल इस्लाम तकीरत आबिदार साहब ने कहा कि शहादत देने का हौसला हिम्मत आ जाए, क्योंकि वो रिश्ता तो टूटने वाला नहीं। अब फकत देखा यह जाता है कि अल्लाह हमसे चाह क्या रहा है, अल्लाह हमसे चाह क्या रहा है। अगर अल्लाह उस वक्त सुलह चाह रहा हो तो इमाम हसन जैसी सुलह हो जाएगी, रसूल जैसी सुलह हुदैबिया हो जाएगी, और अगर अल्लाह उस वक्त दिल जान से जंग करने की बात कर रहा हो, शहादत तलब कर रहा हो, उस वक्त शहादत देने में एक लहजे की भी ताखीर नहीं की जाती। तो मकसद खुदा को समझकर उसके लिए हर वो काम करना, चाहे वो सुलह की शक्ल में हो, चाहे वो जिहाद की शक्ल में हो, ये एक इंसानी रूह को फराहम हो सकती है। चाहे वो रूह उस बुलंद रूह जैसी हो कि जो आगा सदर और उनकी बहन की हो, या हम जैसे मामूली लोगों की हो, तवज्जो कम होता है। जिस रूह से वो लोग आशना थे वो रूह से हम भी आशना हो सकते, जो कैफियत से वो लोग आशना थे, वो लोग जिस लेवल पे आशना थे वो लेवल हम शायद ना पाए, लेकिन उससे कम वाला लेवल जरूर पा सकते। हर इंसान के लिए एक अल्लाह का रास्ता है, जो आगे सदर या उनकी बहन के लेवल के रास्ते पर ना हो, या सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के लेवल का रास्ता ना हो, या शुहदाए करबला के लेवल का रास्ता ना हो, लेकिन आज भी हम जिस सोसाइटी में हैं, जहां पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आज क्या हमारे पास सिवाय खौफ खुदा के किसी और से नहीं डरना एक राय हल है या नहीं है? अल्लाह से डरना और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, आया ये एक राय हल हमारी सोसाइटी के लिए बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर आज हम यहां पर बैठे हुए लोग ये तय कर लेंगे हमको अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना है, हमको अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना है। चंद रोज पहले जब हुजरतुल इस्लाम तकीरत आबिदी साहब गरीब घरों में अनाज तकसीम कर रहे थे, तो कुछ अशरार ने आपके इस अमल से नाराज होकर आपसे गिला शिकवा गाली गलौज की ख्वाहिश रखते हुए मुठभेड़ की, गाड़ी को खराब कर दिया गया। आज अगर हम ये सोच लें कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? इसमें कोई शख्सी चीज थी कि जहां के ऊपर किसी गरीब बेवा के घर, किसी यतीम के घर, किसी मिस्कीन के घर अगर कोई खाना पहुंचाता है तो यह अमल आया अच्छा अमल है या बुरा अमल? और जब हम नेकी में साथ नहीं देंगे और बुराई में लोग बुराओं को साथ देने लगेंगे, तो आप बोलिए नेकी फैलेगी या बुराई? हमारी सोसाइटी में अब यह हाल हो गया है कि शहीद जैसे लोगों को हम याद करते हैं, हमारा अमल उन गुंडों से भी कमतर दर्जे का है, कम से कम वो लोग बुराई को पसंद करते हैं और वो बुराई पे टिके हुए होते हैं और बुरे बुरे का साथ देते हैं। हम इतने अच्छे हो गए कि हम अच्छाई को पसंद तो करते हैं लेकिन अच्छाई का साथ देना नहीं चाहते। जब अच्छाई ये हमारी अच्छाई क्या हमारे खौफ से जुड़ी हुई नहीं है? खौफ से जुड़ी हुई अच्छाई अच्छाई नहीं होती। हजुर बलारा में भी और इमाम हुसैन ने भी अपने हॉल में ये कहा है, क्या बुरे अच्छों की तारीफ नहीं करते? क्या बुरे अच्छों की तारीफ नहीं करते? तो हम भी शायद कभी कभी जमा हो जाते हैं ये सोचकर, मैं अपने आप को भी शामिल रख रहा हूं, कि बुरे अच्छों की तारीफ कर अपने आप को अच्छा कहलाने के मुस्तक ऐसा समझने लगने लगे कि हम क्यों के अच्छों की तारीफ करते हैं, हम हकीकतन अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, मैं जवानों से खिताब कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अच्छों की तारीफ करके अगर अच्छे बन जाना होता तो अहले बैत के दुश्मनों ने उनकी तारीफ की है, रसूल के दुश्मनों ने उनकी तारीफ की है, गुज़िश्ता पैगंबरों के दुश्मनों ने उनकी तारीफ की है। तो जब तारीफ दुश्मन भी कर सकता है तो हम आप जो अपने आप को दोस्त कहते हैं, हम तारीफ कर रहे हैं तो कौन सा अजूबा हो गया, कौन सी अजीब बात हो गई। हमारी अच्छाई अगर खौफ खुदा से शुरू होती, खशियत खुदा से शुरू होती, वो कि जहां पर अल्लाह बड़ा नजर आने लगे। आप अगर गौर करें कि अल्लाह ही से डरेंगे और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेंगे, क्यों? दुनिया में तो कोई भी डंडा मार सकता है, दुनिया में तो कोई भी गोली चला सकता है, तो हम क्यों ना डंडे से डरें, क्यों ना गोली से डरें, क्यों ना उस तकलीफ के जो हमारे बदन को दी जा सकती है, कोई गाली दे सकता है जिससे हमारे लोगों में बेइज्जती होगी, हाथ पैर हमारे तोड़ सकता है जिससे हमारी लोगों में सुक्ति होगी, तो हम ये सब से क्यों ना डरें? आया आम इंसान इसे डरता है, हम आम इंसान क्यों ना रहे? ये सवाल है, ये शहादत ये सवाल तो देती उठाती है, हम क्यों ना डरें? जवाब ये है कि अगर तुम अल्लाह के हो तो तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया था कि तुम इसमें से गुजरो। जिस तरीके से तुम खाना खाते हो और हजम कर लेते हो, जिस तरीके से तुम पानी पीते हो और निगल लेते हो, तुम जिस तरीके से और मुख्तलिफ अच्छी चीजों से लुत्फ अंदोज होते हो, तो वो जैसे अल्लाह ने लिए तुम्हारे लिए फराहम किया अच्छी गजा अच्छा पानी और दूसरे लज्जात, तो उस तरीके से उसने तुम्हारे लिए ये भी फराहम किया है। तुम अच्छा तो ले लेते हो, लेकिन वो तकलीफ वो जिम्मेदारी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी है कि जो तकलीफ से गुजरती है वो तुम कबूल नहीं करते, तो बताओ तुम में और काफिर में फर्क क्या है, तुम में और काफिर में फर्क क्या है? वो भी कबूल करता है लज्जतों से, वो भी अपने आप को लुत्फंदोज करता है, और उसके जहन में खौफ खुदा के जरिए से वो मुश्किलात को तय करना कि जो हत्ता शहादत तक ले जा सकती हैं, उसका कोई दूरो दूर तसव्वुर नहीं है। तो पता चलता है कि ईमान का सफर शुरू होता है तकलीफों को कबूल करने से, इसलिए लोग ईमान नहीं लाते थे रसूल के वक्त। जब जब ईमान लाना हाथ पैर तुड़ाने वाली कैफियत होती तो बिलाल जैसा हबशी ईमान लाया।
नारे सलाम।
तकलीफ अगर बर्दाश्त करना हमारे लिए दीन के दायरे में सख्त है तो हमको कई चीजों से अपने आप को, कई फुरूए दीन से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। जहां तो दूर की बात, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के भी नहीं रहेंगे। अब तो यह हालत हो गई है कि अगर आप खैरात भी कर रहे हो, ना आप अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, ना नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं, ना आप जिहाद कर रहे हैं, आप सिवाय इसके के एक आमले ज़कात के तौर पर फकत ज़कात तकसीम कर रहे हैं, तो कहां तक आ गई बात कि आपका दूसरा लेवल का फुरूए दीन वो भी आप अंजाम नहीं दे सकते, तो नमाज कितनी दूर रह गई। जब आप ज़कात कहते हैं, ज़कात का मतलब यह है कि ज़कात को पहुंचाया जाए मुस्तहक़े ज़कात के पास। आज अगर कोई ज़कात पहुंचा रहा है किसी मुस्तहक़ के पास, तो उस पहुंचा रहा है किसी मुस्तहक़ के पास और उसे इजाजत नहीं दी जा रही है, तो पहले नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, ये जो आप बात बोल रहे हैं कहां तक सही हो जाएगी? ये चीज खत्म हो जाएगी। कल आपकी बात नमाज पर आएगी कि नमाज पढ़ने वाले को भी रोका जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, हंसा जाएगा, तमाशा बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि मस्जिदों को बनाया जा रहा है ताकि यादे हुसैन से रोका जाए। होगा या नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सब में जो चीज है और नहीं है वो अलग है। मौलाना तकरीर साहब ने ये बात बतलाई, जो फर्क है रसूल और आले रसूल के मकतब में, जो दूसरे मकातिब में उस रोशन तरीके से नहीं देखा और समझा जा सकता है, वो अल्लाह की जात से बेपना मोहब्बत का उंसुर है, वो एलिमेंट के जो अल्लाह की जात से बेपना मोहब्बत रखना। अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान क्या है, वो लोग जो ईमान वाले होते हैं शिद्दत से अल्लाह की मोहब्बत करते हैं, और उसी बुनियाद पे, उसी मोहब्बत की बुनियाद पर कुरान कह रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल कह दो कि मेरे से मेरी बात की इताअत करो, मेरी बात को सुने। और रसूल की बात सुनने में ये सब चीजें शामिल आती हैं, जिसमें अपनी कुर्बानी देना भी शामिल है। आज अगर हम इनका तस्करा कर रहे हैं बहुनवाने तारीफ और हमारी जिंदगियों से उसको मरबूत नहीं कर सक रहे हैं, तो हमारा हम इनका हक अदा नहीं कर पाते। बेरत रहना भी हो, जब आहा की शहादत हुई कहते हैं कि पांच लोग सिवाय पांच के और कोई नजफ में क्याम नहीं किया, और हुकूमत के लिए बहुत आसान था कि पांच लोग निकले और हुकूमत ने उनको पांच को गाड़ी में भरकर लेकर चले गए, उसके बाद उनकी सूरत दिखाई नहीं। अब आप देखिए नतीजे क्या होते रहे, सद्दाम का जो होना था हुआ, वो लोग जो सद्दाम का साथ दे रहे थे तिक्रीत के लोग, शुमाल इराक में क्रिश्चियंस आबादी बहुत बड़ी थी मुसल की और मुख्तलिफ और इलाकों की, यजीदियों की आबादी भी शुमाल इराक में बहुत ही पुरानी आबादी है, ये पुरानी आबादियां 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। ये सब सद्दाम के जुल्म को देखते हुए, क्योंकि उनको नहीं छेड़ रहा था, खामोश बैठे थे। आज क्या हुआ, उनकी ईंट से ईंट बच गई, क्रिश्चियंस की ईंट से ईंट बच गई, जो 2000 साल पहले से वहां पर मौजूद, इस्लाम से पहले से मौजूद है, इस्लाम को आके तो 1400 कुछ साल हुए, ये 2000 साल से थे वहां, लेकिन उनकी ईंट से ईंट बच गई। यजीदी ये भी बहुत ही पुरानी कौम है, ये यजीद इस्लाम वाले यजीद से उनका ताल्लुक नहीं है, उनकी ईंट से ईंट बच गई। तिक्रीत के, रमादी के, फलूजा के, ये अंबार प्रोविंस जो बोलते हैं इराक का, उसके जितने भी शिद्दत पसंद सद्दाम के सपोर्टर्स थे उनका क्या हुआ, ईंट से ईंट बच गई। तो जुल्म का साथ दिए ईंट से ईंट बच गई, हक का साथ दो ईंट से ईंट बच जाए तो फर्क है या नहीं है, जुल्म का साथ दिए तब भी ईंट से ईंट बच गई, हक का साथ दिए चलो तब भी ईंट से ईंट बच गई, हक का साथ देकर ईंट से ईंट बच गई तो आप शहीद हो गए, आप बुलंद हो गए, आपकी औलाद को आपने एक फिक्र दे दिया, लेकिन जुल्म और जालिम का साथ देने वाला अपनी औलाद को क्या देकर गया, किस बात पर वो औलाद फख्र करेगी, किस बात पर वो सोसाइटी को माशरा फख्र करेगा कि हमारे बाप हमारे दादा ने जुल्म का साथ दिया था। ताकतवर के सामने झुक गए थे, लेकिन फिर भी बदकिस्मती हमारी के उस ताकत ने उसके बता की, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं थी, वो भी गया और हम भी गए। तो जब सद्दाम ये जुल्म कर रहा था, किसी ने नहीं सोचा हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि सद्दाम डूबने वाला नजर नहीं आ रहा था, कटने वाला सदर नजर आ रहा था और उसकी बहन, लोगों की नजर में सदर सुक्की की अलामत थी। इस तरीके से आपने फरमाया कि अगर वो आती थी तो कोई उठकर एहतराम भी एक आलिमा होने के नाते नहीं करता था, ताकि ये बतलाने को कि हम कुछ हैं और तुम कुछ नहीं हो, ये अल्लाह से हटकर हम कुछ हैं कहना यजीदियों का रिवाज, माविया का रिवाज, अबू सुफियान का रिवाज, आज के बादशाहों का रिवाज, चाहे वो शाह ईरान हो या कोई और शहंशाह जो आज अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। क्या इन्होंने ताकत का क्या नतीजा होता है नहीं देखा, कुरान में बीसों आयतें जहां के ऊपर गुज़िश्ता कौमों की तबाही की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कल थे बड़े ताकतवर थे, आज नहीं है, इनका याद करने वाला भी कोई नहीं है, ये तो पत्थर काट के घर बना लेते थे, पिरामिड बना लेते थे, आज इनका नामो निशान नहीं है, जो अच्छाई करता है वो अच्छाई बाकी रह जाती है, जो अच्छाई नहीं करता ना वो बाकी रहता ना उसकी बुराई बाकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि सिवाय वजह खुदा के कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। कुरान की आयत भी वही माना में कि अच्छाई करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, बाकी रह जाओगे। दुनिया की बका और फना हालात के ऊपर है, दुनिया की बका और फना हालात पर है। आपने देखा कभी प्लेन में बैठा, पायलट ले जाके क्रैश कर दिया, वो जो लोग 150 के करीब थे उनकी कोई चॉइस थी? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग 200 की तादाद में मर जाते, उनकी चॉइस रहती है? एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं। इंसान की जिंदगी हवादिस का शिकार होना है, होती रहेगी। हम बचते भी फिरेंगे तो हमको मौत आएगी। सवाल यह है कि जो मौका दिया गया है कि खाने और पीने के लिए दिया है, अल्लज़ीना कफरू याकुलूना कमा ताकुल अनआम, कुरान की आयत है, वो लोग जो कुफर इख्तियार करते हैं जानवरों जैसा खाते हैं, वन्नार मस्वा लहुम, और जहन्नमी उनका ठिकाना है। किसी इंसान की जिंदगी अगर गज़ा बन जाए तो अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा, वो चाहे क्या नारा लगाते लगा दे। नारों से दीन नहीं मिलता, दीन खौफे खुदा से मिलता है। ये हमारे उलमा ने सिखाया है, ये हमारे आइमा ने सिखाया है, ये औसिया ने सिखाया है, ये अंबिया ने सिखाया है, आदम से खातम और खातम के बाद आज तक जो कुछ भी खैर का सिलसिला चलता हुआ आज तक हमको मिला है वो सिवाय खुदा को करीब से समझने की कोशिश और अपने आप को उस खुदा की जात के सामने बंदगी के साथ पेश करना और उससे हुक्म लेके बंदगी के उन्वान से जो चाहे वो करना वो कर लेना। आपस में इत्तेहाद बढ़ाना, झगड़ा नहीं करना, इत्तेहाद को अहमियत देना, गरीबों की तरफ तवज्जो करना, ये सब चीजें अल्लाह की जात के सामने गुलामी करने के नतीजे में आती है। वरना किसी को किसी गरीब की बीमार हालत फटीचर कैफियत अच्छी नजर नहीं आती। चमकते धमकते हीरो और हीरोइनों की फोटोएं अच्छी नजर आती हैं, क्योंकि दिल में अभी खौफ खुदा नहीं बचा बसा है। जब बस जाता है तो वो गंदा और ये अच्छा नजर आता है। गरीब की भूख में जन्नत दिखती है और चमकती हुई है हीरो हीरोइनों की चमक में जहन्नम नजर आता है, तो किसी को जहन्नम की तरफ जाना पसंद नहीं आता, जन्नत की तरफ जाना है तो उस चमक से निकलता है और इस जुल्मत को जो जाहिरी जुल्मत है लेकिन उसकी नजर में चमक है उसकी तरफ जाता है। ऐसों की फिर मदद भी करना हमारा फरीजा बनता है। आपने कोशिश की, कोशिश कर रहे हैं आगे मुनवर वही बस्तियों में गरीबों के बच्चों को, जो सिक्स क्लास के बाद क्योंकि कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं पढ़ाई में, छठी जमात के बाद पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, पांचवी जमात तक फिफ्थ क्लास तक कॉन्सेप्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते। जैसे सिक्स क्लास में आता है साइंस के मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चों के लिए जब तक वो समझेंगे नहीं हल करना मुमकिन नहीं होता। फिफ्थ क्लास तक रटकर भी पढ़ाई हो सकती है, सिक्स के बाद की पढ़ाई रटकर नहीं हो सकती, फिफ्थ से पहले भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरा रटाकर बच्चे को एग्जाम पास किया करवाया जा सकता है। सिक्स के बाद कॉन्सेप्ट्स आते हैं, गरीबों के पास ट्यूशन दिलाने को पैसे नहीं है, उनको अंदाजा भी नहीं है कि सिक्स में आने के बाद बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएंगे कि आठवीं जमात तक उनमें से 70% स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे स्कूल का ड्रॉपआउट रेट देख लीजिए आप, चाहे वो दूसरे स्कूल हो आइसोलेटेड स्कूल हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों का जहां पर हाथ पकड़ना है ना माँ बाप को मालूम है, और जिनको मालूम है उनको दिलचस्पी नहीं, जिसको मालूम है उनको दिलचस्पी नहीं है। उन बच्चों के साथ लेकर पढ़ने पढ़ाने का हमारे कुछ और भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, गरीबों में जो जो कुछ पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे। हमारा फरीजा बनता है कि इनका साथ दे या ना दे, हम आया इस चीज को सेंट्रलाइज करें या ना करें, और वो मुखालफत कर रहे हैं उनके मुकाबले में टिककर ठहरे या ना ठहरे, इसको एक सोशल मूवमेंट बनाए या ना बनाए। आगा सदर उस जुल्मत की हालत में उसको सोशल मूवमेंट बना दे की कोशिश की, जहां पर बास पार्टी जो जो हुकूमत थी सद्दाम की, आपकी पार्टी का नाम आपने हिजबुत दावा रखा था, अगर किसी को हिजबुत दावा के मेंबर होने का शायबा भी हो जाता तो ये लोग मार डालते, शायबा छोटे बच्चों पे भी अगर उनका अंदाजा हो जाता कि ये लोग हिजबुत दावा के ऑफिस को गए कहीं भी तो मार डालते। मैं ऐसे कई इराकियों से मिला हूं कि जो कहते हैं कि हमने फकत 12 साल की उम्र से हमको जेल में डाल दिया गया क्योंकि हम को समझ रहे थे कि बास पार्टी के तरफदार दावा पार्टी के तरफदार है, 12 साल के बच्चों। आप सोचिए इतनी शिद्दत की हालत में आपने क़याम किया, आए हमारे हालात वैसी हैं। अल्लाह ने हमको वो हालात में क़याम करने के लिए कहा है, शहीद सदर को कहा था, उन्होंने सुना क़याम किया, उनकी बहन से अल्लाह ने कहा था सुना क़याम किया, जिस तरीके से अल्लाह ने इमाम हुसैन को कहा था उन्होंने किया, जिस तरीके से जनाब ज़ैनब को कहा था उन्होंने किया, जनाब ज़ैनुल आबिदीन को कहा था उन्होंने किया, आज हमको तो अल्लाह वो लेवल की जुल्मत में तो चिराग रोशन करने की बात नहीं कर रहा है। हमारा काम सहल है, सहल काम भी नहीं करेंगे तो हमारा ईमान बाकी रहेगा नहीं रहेगा, हमारा नहीं रहेगा तो हमारी आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा। हम ही अगर ढुलमुल यकीन रहेंगे तो आज की चमकती हुई मादी दुनिया में आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा, बिल्कुल भी यकीन नहीं रहेगा उनको, तो ढुलमुल हमारा तो ढुलमुल है उनको तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा यकीन। वैसी कैफियत में अगर हम पैदा तो मुसलमान हुए लेकिन एक दो जनरेशन के बाद अगर हमारी औलाद तकरीबन काफिर अगर ना हो जाए, हुआ है, हुआ है। आप यूरोप को स्टडी कीजिए, आप अमेरिकन हिस्ट्री को स्टडी कीजिए, आज स्टैटिस्टिक्स देखिए किस शिद्दत से बेदीनी उनके पास बढ़ी है, और जहां पर अपने आप को दीनदार कहते हैं कोई दीनी अमल से उनका कोई रब बाकी नहीं रहा। आया हम चाहते हैं हमारी औलाद वैसी हो जाए, अगर नहीं चाहते हैं तो इन लोगों की बतलाई हुई खून से रोशन की हुई तहरीक में अपने आप को जोड़ लें। आपका एक मशहूर कौल था, आप 1918 अप्रैल 9 को शहीद, इंकलाब 79 11 फरवरी को है, तो एक साल दो महीने भी नहीं हुए थे कि आप शहीद कर दिए गए। उसी अस्था में आपका एक मशहूर कौल है, आप कहते ज़ूबू फिल खुमैनी कमा ज़ाबा हुआ फिल इस्लाम, तुम लोग भूल जाओ खुमैनी में जैसा खुमैनी इस्लाम में भूल गए। कोई अपने साथ के बराबर के मर जाता इस तरीके से कि इस्लाम में भूल गया है बोलना बड़ी चीज होती है, लोगों में रहता है कि मैं भी तो कोई चीज हूं। शहीद सदर कोई छोटी चीज का नाम नहीं थे, वो भी अपनी जगह मर जाते, वो भी वही काम कर चुके थे जो खुमैनी साहब ने लिखा था, बल्कि उनकी किताबें खुमैनी साहब की किताबों से ज्यादा है। लेकिन ये कहना कि ये आदमी इस्लाम में भूल गया है तुम भी भूल जाओ, ये ईरान की आवाम के लिए था, ईरान की आवाम तो इंकलाब कर चुकी थी। इस किस्म की गुफ्तगु करने का सबब क्या हुआ, आपको शहीद कर दिया गया, जुर्रत थी और शहीद हो गए। खुदा उस जुर्रत में से कुछ जुर्रत हम सबको दे, हमारी माओ और बहनों को बितुल हुदा की जरूरत है, और हम जितना सब्र करना है उतना सब्र करें लेकिन अपने काम को ना रोकें, हम अपने काम को ना रोकें। लोग हम पर जुल्म करते हैं, हम जुल्म सहें लेकिन काम ना रोकें। अगर हम 10 आदमी जाकर कोई काम कर रहे हो कोई रोकता है तो कदम 100 चले जाए, और अगर 100 को जाने पर कोई रोक रहा है तो 1000 चले जाए। ये ताकत अगर हम पैदा कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं शफाअत हुसैन यकीनी है, शफाअत ज़ैनब यकीनी है, क्योंकि वही काम कर रहे हैं कि जो इस्लाम के अरकान को प्यादा करने में रोकने की कोशिश यजीद का से शिकवा इमाम हुसैन को था, वो ये था कि अगर ये ईमान का दावेदार हो जाए तो फिर ईमान इस्लाम की दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ईमान की मिसाल अमीरुल मोमिनीन कह के लोग यजीद को ईमान की मिसाल समझेंगे तो फिर ईमान बाकी नहीं रहेगा। हुक्म में इलाही पर कोई अमल नहीं करेगा, जब हुक्म में इलाही पर अमल नहीं होगा तो दीन की बका नहीं रहेगी। आज हमें अगर हुक्म में इलाही से कोई रोक रहा है तो यजीदी उन्वान से रोक रहा है, नुमाइंदे यजीद है बोलकर रोक रहा है, जमाइंदे यजीद के सामने ठहर तो जाओ, वो भी ताकतवर हो गया। आज हमारे गुंडे हमारे वास्ते ताकत बन गए, फिर अपने आप तालीम बोले, हमारे गुंडे हमारे सामने ताकतवर हो गए। अरे हुक्मरान जो अगर काट देते तो कोई पूछता नहीं था, अरे गुंडा किसी को मारेगा तो कहीं पुलिस तक तो जाएगा, हम फिर उन्हीं से भी डर रहे हैं। गुंडों से डर के ईमान अगर पलेगा पलेगा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। बेईमानी को ईमान बोल रहे हैं ये बहुत आसानी, बेईमानी को ईमान बोल रहे हैं, यजीद भी अपने आप को बाईमान कहता था, मौलवी अपने आप को बाईमान कहता था। ईमान का दावा करने वालों की कभी दुनिया में कभी नहीं रही है, ईमान पर चलने वालों की खिल्लत है। मौला ने अपनी खिलाफत के दौर में एक खुतबे में कहा अइना सुलाहा हुकुम, तुम्हारे अच्छे क्या हो। मौला कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, 25 साल के दौर में रसूल की रहमत से लेके अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत जाहिरी तक कैफियत ये हो गई थी कि मादे में इतने डूब गए थे मुसलमान के अली को सवाल करना पड़ रहा था कि तुम्हारे अच्छे क्या हुए, थे रहे नहीं, भूल गए, खत्म हो गए, जमाने का रंग उनके ऊपर गालिब आ गया। जब यह हाल हुआ तो हो क्या गया, जब इमाम हुसैन क्याम कर रहे तो कुछ लोगों ने आकर कहा कि देखिए आप क्यों क्याम कर रहे हैं, आप नवासे रसूल हैं, आप क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप ये काम अंजाम देंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। आपने कहा कि यहया इब्ने ज़करिया को अगर कत्ल कर दिया जा सकता है अल्लाह के हुक्म को बाकी रखने के लिए, अल्लाह के हुक्म को बाकी रखने के लिए, तो मेरा भी अगर कत्ल किया जाता है तो क्या। जनाब यहया नबी थे, जनाब ईसा के दौर के थे, और जॉन द बैप्टिस्ट कहकर क्रिश्चियन दुनिया में मारूफ है। आपने जनाब ईसा को बैप्टाइज किया तो जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं आपको, यहया हम बोलते हैं अरबी का नाम है, आपको मार डाला गया। उस जमाने के बादशाह एक गलत शादी की थी और उस शादी के आपने मुखालिफ किया। उस बादशाह की किसी तकरीब में, विलादत की तकरीब में, उस औरत की बेटी ने किसी किस्म का नाच किया जिसके नतीजे में बादशाह ने खुश होकर कहा कि बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या बहुमान तोहफा दे सकता हूं। वो मां के पास जाके बोली कि ये पूछ रहे हैं मैं क्या मांगू, तो कहा इनसे बोल यहया का सर चाहिए, क्योंकि ये इस्तेवा जो मैंने किया है बादशाह से वो कह रहे हैं कि हराम है, हराम था। तो यहया को क्यों मारा गया, एक इस्तेवा बादशाह का, क्योंकि शरायत की बुनियाद पर नहीं था। यहया ने मुखालफत की, मौका पाते ही उस औरत ने अपनी बेटी के जरिए से यहया का सर मंगवाया, यहया का सर आ गया। ताज्जुब, पैगंबर खुदा जनाब ईसा को बैप्टाइज करने वाला, जिसकी इबादत बचपन से ऐसी थी कि कुरान कहता वो आज तक हुक्मा सबिया, हमने हिकमत बचपन में यहया को अता की, कुरान की आयत है, वो यहया का सर ला दिया गया तश्त में। ये तारीख है दुनिया की, ये तारीख है दुनिया की कि हुक्मे शरीयत के लिए पैगंबर अपना सर कटाने को तैयार हो जाता है, वो सर कटाने को हुसैन अपने से तशबीह देते हैं। आज हुक्मे खुदा पामाल होता है तो हमारे कान पर जू नहीं रहती। ये सिलसिले से जुड़ना है तो हौसला करना है, अल्लाह से दुआ करना है और अल्लाह से करीब होना है। ये रास्ता, ये हिम्मत, ये हौसला तब तक के जब तक कि हम अल्लाह की तरफ ना चले जाएं, अल्लाह के पूरे ना हो जाएं, अल्लाह के रंग में रंगे ना जाएं, तब तक मुमकिन नहीं है। इन शहादतों के तूफान में बस यही दुआ है कि अल्लाह हमको उस रंग में रंग दे जो उसका रंग है, और उसके रंग के बाद किसी और का रंग नजर नहीं आएगा, और रास्ते के लिए मोहम्मद और आले रसूल मोहम्मद का रास्ता हमारे लिए वाज़े रहेगा, और दुनिया आखिरत और हमारी आने वाली नस्लें इस दुनिया में और आखिरत में कमाल और बुलंदी की तरफ पहुंचेगी और दूसरों के लिए बशर राह बनेगी। अगर ना ये ना हो तो सिवाय जुल्मतों के और कुछ नहीं रहेगा, और हमको फिर अल्लाह के सामने बहाना नहीं रहेगा कि जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, कहते हैं कि देखो कि मेरे पास तुम्हारे पास अल्लाह के सामने कोई बहाना नहीं रहेगा, तो आखिरत में और खबर भी अगर मोमिनी अमीरुल मोमिनीन हमसे सवाल कर बैठे कि बताओ तुमने क्या था कि जो मेरी बताई हुई रास्ते पर तुम अमल नहीं करे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। और ये रास्ते पर अमल करना ये एक आदमी का बस की बात नहीं है, ये सबको मिलकर करने की बात है। तो जब शक्ल जमात और वही मौला के कौल के मुताबिक जमात में फरमाते हैं कि अल्लाह का हाथ जमात के साथ है, तो वही अगर हम एक जमात बन जाए महसूस जैसे कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार हो, तो तब्दीली आ सकती है, नेकी आ सकती है, कमजोर भूखों को तवानाई मिल सकती है, पढ़ाई मिल सकती है, खौफ से नजात मिल सकती है, और अल्लाह का दीन दुनिया में जैसे मुख्तलिफ जगहों पे आम हो रहा है हमारे यहाँ भी आम हो सकता है।